आज के सबक को देखने से पहले उम्मीद है आपने पिछली आयात पर गौर फिक्र किया होगा। अल्लाह ताला ने दुनिया की जिंदगी को किसके लिए जीनत बनाया, हमारे लिए या काफरों के लिए? लेकिन आज कितनी बड़ी जीनत बनी हुई हमारे लिए। इसका फायदा फायदा लगता है, इसका नुकसान नुकसान लगता है, इसकी मुसीबत सबसे बड़ी मुसीबत लगती है, और इसमें मिलने वाला कोई फायदा सबसे बड़ा फायदा लगता है। ये जीनत बन गई ना, अट्रैक्शन बन गई, अट्रैक्ट होता है इंसान इसकी तरफ। और ये वाकई ऐसी सरसब्ज चीज है जिसकी तरफ इंसान को उसको रखा ही ऐसा है अल्लाह ताला ने, क्योंकि इसी में हमारा इम्तिहान है। फिर आपने देखा होगा उन लोगों को भी जो कैसे झगड़ालू होते हैं और झगड़े को पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने नफ्स को बेच देते हैं अल्लाह की रजा की खातिर, वो लोग कैसे होते हैं। और हमने इसमें से कौन से अपने लिए देखा कि हम किन में हैं और किन में बनना चाहते हैं। और फिर दोबारा आया, पहले भी आया था कि शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, अब फिर आया और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अल्लाह के दीन में पूरे के पूरे दाखिल होना है, आधे आधे नहीं। और हसना का माना आपने समझा होगा, और फिर अब जब आपने नमाज पढ़ी होगी और उसमें ये दुआ की होगी तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि जब मैं मांग रही हूँ दुनिया की हसना और आखरत की हसना तो मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, आज की आयात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया जाएगा कुछ सवालात, बार बार आएगा कि वो सवाल करते हैं, वो सवाल करते हैं। तो जो सवालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे गए उनका जवाब अल्लाह ताला ने दिया है, और वो किस किस बारे में पूछे गए, खर्च करने के बारे में पूछे गए, यतीमों के बारे में पूछे गए, शराब और जुए के बारे में पूछे गए। तो ये कुछ चंद एक सवालात हैं जिनके जवाबात आज हमें मिलेंगे कि कुरान क्या कहता है इन चीजों के बारे में, किधर खर्च करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और फिर इसी तरह बड़ी हिकमत अल्लाह ताला के फैसलों की कि जो बाज दफा हम नहीं समझ पाते, वो भी आज के सबक में है। इसी तरह क़िताल के बारे में कुरान क्या कहता है, देखते हैं आज की आयात, आयत नंबर 214 से। हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, क्या तुमने ये समझ लिया है कि तुम दाखिल हो जाओगे जन्नत में ऐसे, जबकि अभी तो तुम्हारे पास वो मिसाल ही नहीं आई जो तुमसे पहले लोगों पे गुजरी। अल्लाह ताला ने इस आयत में किसको खिताब किया? तुम समझते हो कि तुम ऐसे ही जन्नत में चले जाओगे जबकि तुम्हें पर मिसाल नहीं आई, मुसलमानों को या काफरों को? मुसलमानों को, ठीक है, क्योंकि वही उम्मीद लगाते हैं ना कि हम जन्नत में जाएंगे, उन्हीं का ये कहना होता है ना। तो मुसलमानों को कहा जा रहा है, जो इस्लाम ला चुके हैं, जो कलमा पढ़ चुके हैं, उनको कहा जा रहा है, क्या तुमने ऐसे ही समझ लिया, तुम यूं ही जन्नत में चले जाओगे? यानी अपनी जरा माइंड सेटिंग सही करो, जन्नत में दाखिला ऐसे ही नहीं हो जाता, तुम्हारे ऊपर तो वो चीजें अभी गुजरी नहीं है जो तुमसे पहले लोगों पे गुजरी थी। अब सोचने की बात ये है कि पहले लोगों पे क्या गुजरा था, ये तभी समझ आएगा ना कि किस चीज को कहा जा रहा है। यानी आजमाइशें, यानी इम्तिहानात, यानी आगे बताया गया इसी का जवाब कि क्या गुजरा था उनके ऊपर, मस्सतहुमुल बसा वद्दरा वज़ुलज़िलू, ये तीन चीजें उन पे गुजरी थी। क्या हुआ था उनके साथ, उनको पहुंची थी सख्तियां, और खास तौर पे उस सख्ती के लिए कहते हैं जो माल से मुतालिक हो, यानी फकर व फाका, भूख और दर्रा में हर किस्म की जहनी परेशानी, जिस्मानी तकलीफ, जख्म हो गए या बीमारियां हो गई, या जैसे आप कहते हैं जिसको टेंशन, स्ट्रेस, जहनी टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर जिसको आप कहते हैं, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। वह जुल जीलू, और वो हिला मारे गए, हिला मारे जाना मतलब क्या, जैसे झंझोड़ दिए गए, यानी उनके अंदर उनकी जात में भूचाल आ गया जिसको कहते हैं। यानी कई सदमे, कई अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह सबको महफूज रखना, कई ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान को हिला के रख देती हैं। इंसान को समझ नहीं आता कि ये मेरे साथ हो क्या गया। इतनी मुश्किल चीजें होती हैं, जलजला कैसा होता है ना, हिला देता है ना हर चीज को। तो कई मुसीबतें भी इंसानों को हिला के रख देती हैं। ये तीन चीजें बताई गई कि पिछले लोगों पे ये चीजें आई हुई थी, तो तुमने ऐसे ही समझ लिया कि उनकी तरह तो तुम्हें अभी आजमाया ही नहीं गया। उनके ऊपर तो बासा आई, दर्रा आई, जुलजिलू, वो हिला भी दिए गए, और इतने शदीद हिला दिए गए, इतने शदीद, हत्ता यहां तक के यकूल रसूल, कह उठे, पुकार उठे रसूल, चीख उठे रसूल, वल्लदीना आमनू माहू, और उनके साथ जो ईमान लाने वाले थे वो भी पुकार उठे, चीख उठे, मता नसरुल्लाह, कब आएगी अल्लाह की मदद। यानी वो टू दिस एक्सटेंट वो चले गए। आप समझ सकते हैं कि अंबिया का जो सबर होता था वो कितना बड़ा होता था। वो ऐसी छोटी बातों पे वो हिल नहीं जाते थे, अरे छोटी छोटी बातों के ऊपर वो घबरा नहीं उठते थे। और ईमान वालों का पाया इस्तकलाल कैसा होता था, ईमान वाले कैसे होते थे, अभी आपको मैं मिसालें बताऊंगी। लेकिन सोचे, आप इमेजिन करें कि अगर नबी कह उठे मता नसरुल्लाह, तो सोचें कि उनके ऊपर क्या बीती होगी। जस्ट हिस्ट्री में जाके देखें, कभी हम अपने ऊपर समझते हैं ना कि हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आ गई, हाय मुसीबतों के पहाड़ टूट गए, हाय सख्तियां आ गई, हाय, वो तुम्हें तो पता ही नहीं, अभी तुम तो जानते ही नहीं हो सख्ती है क्या, जानते हो सख्ती क्या है। आइए इस हदीस से देखते हैं कि सख्ती क्या होती है। सही हदीस में एक दफा हजरत खब्बाब बिन अरत रजी अल्लाह ताला उन्होंने कहा, और खब्बाब बिन अरत के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि वो कौन है। वो उम्मे नमार एक औरत थी, उसके गुलाम थे, लोहे का काम बहुत अच्छा करना जानते थे। और जब गुलाम इस्लाम ले आते थे तो उन गुलामों के लिए तो जिंदगी दूभर हो जाती थी। जब ये इस्लाम लेकर आए तो इस औरत ने उनको इस कदर टॉर्चर किया, इतना जुल्म किया कि यानी आप सोचे कि जब इस्लाम को उरूज आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की वफात हो चुकी थी, तो बाद में एक दफा गालिबन हजरत उमर थी शायद कि उन्होंने इनसे पूछा कि आपको कैसा सताया गया जब आप इस्लाम लाए थे। तो उन्होंने अपनी पीठ से अपनी कमीज उठाई और पूरी पीठ दागदार थी, वही जैसे दाग होते हैं इस तरह से थे, यानी पूरी कमर पे, पूरी बैक पे, कि क्या करते थे कि इन कोयले दहका देते थे और उसके बाद नंगी पीठ इनको ऊपर लिटा देते थे और हिलने नहीं देते थे, ऊपर पत्थर रख देते थे कि हिल ना सके। और वो जो कोयले बुझते थे वो इनकी जो जो यानी चर्बी पिघलती थी उससे बुझते थे, जिससे इनकी पूरी पीठ पे निशान पड़ गए थे। आप सोचिए, इतने टॉर्चर के बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, आप हमारे लिए दुआ नहीं करते कि यानी हम इतनी मुश्किल में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त काबे के साथ टेक लगाए बैठे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे हुए, फरमाया तुम अभी से घबराओगे, सुनो तुमसे पहले जो तौहीद के ऊपर चलने वाले थे उनको क्या किया जाता था कि जमीन खोद के ना उसमें खड़ा कर देते थे, खड़ा कर देते होते थे, और यानी आधा जिस्म उसके अंदर जमीन के अंदर बरी कर दिया, उनके अंदर खड़ा कर दिया, दबा दिया उनको, और उनके सरों के ऊपर आरे चलाए जाते थे, आरे चलाए जाते थे, तो उससे उनको चीर के दो टुकड़े कर दिया जाता था। लेकिन वो तौहीद से नहीं हटते थे, लोहे की कंघियों से उनके गोश्त नोचे जाते थे, लेकिन वो अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ते थे। यानी लोहे की कंघियां उनके अंदर चलाई जाती थी गोश्त में। कसम अल्लाह की, इस दीन को तो मेरा अल्लाह, मेरा रब इतना पूरा करेगा कि बगैर खौफ व खतर के सनआ से हजरे मौत तक सवार तनहा सफर करने लगेगा और उसको सिवाय अल्लाह के किसी का खौफ नहीं होगा। यानी ऐसा वक्त आएगा, अच्छा वक्त आएगा। लेकिन उसके लिए सबर चाहिए, सबर चाहिए उसके लिए। अल्लाह ताला ने ऐसे ही जन्नत नहीं दे देनी, आगे भी आता है। कुरान पाक में सूरह आले इमरान में आता है, अल्लाह ताला ने फरमाया अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यालम अल्लाहु अल्लदीन जाहदू मिनकुम। अल्लाह ने तो अभी देखा ही नहीं है तुम में से कोशिश करने वाले कौन से और सबर करने वाले कौन से। अल्लाह ने तो, अल्लाह को तो पता है, अल्लाह ताला ने ये नहीं कि अल्लाह को अब इल्म होगा, नहीं, अल्लाह को तो पहले से इल्म है, लेकिन जब तक वो जाहिर ना कर दे, जब तक वो सब के ऊपर आया ना कर दे, उस वक्त तक बात नहीं बनती। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हुज्जत को तमाम करना है कि ये देखो ये वो मेरे बंदे हैं जो अल्लाह के दीन की खातिर कैसे, यानी शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह हो गए कि चिटाने पहाड़ अपनी जगह से हिल जाए मगर इन्होंने अपना दीन नहीं छोड़ा। खब्बाब बिन अरत जिनके ऊपर इतना टॉर्चर हो रहा है, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिया। सोचिए ये जो वो शेर है ना कि ये शहादत का अल्फत, ये शहादत का उल्फत में कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, शहादत गहे उल्फत में कदम रखना, ये तो बहुत बड़ी बात है। मुसलमान होना आसान नहीं है। आज हम काफिरों के सामने फखर करके कहते हैं ना, हम तो मुसलमान है, हमने तो जन्नत में चले जाना, तुम लोगों ने मरना है जहन्नुम के अंदर। ये आपको किसने बताया? ये आयतें नहीं पढ़े कुरान में? तुमने जन्नत में जाना आसान समझा? देखें जब सहाबा कराम पे सब पे इतना मुश्किल वक्त आया था और वो आजाब का वक्त था। जंगे आजाब के बारे में सूरह आजाब में आप कभी पढ़ के देखें, वहां पे कहा गया है, अल्लाह ताला ने आयत 10 और 11 पढ़े तो, कि जब तुम्हारे ऊपर और नीचे से काफिर तुम पे चढ़ दौड़े, यानी 10,000 का लश्कर लेके वो मदीना के बाहर खड़े हैं, इतनी छोटी सी बस्ती है और सब मिलके आ गए, सब कबाइल एक हो गए, कुरैश अकेले नहीं थे। और उस वक्त खौफ का आलम ये था कि फरमाया तुम्हारी आंखें पथरा के रह गई और कलेजे मुंह को आने लगे, बलगतिल कुलूब हनाजिर, यानी हंजरा कहते हैं हलक के अंदर जैसे दिल धड़कने लगता है ना, कि उप मुंह पे आ रहे हैं। और उस वक्त तुम अल्लाह के मुतल्लिक तरह तरह के गुमान करने लगे। यानी जो मुनाफिक थे उन्होंने तो कहा लो जी हमें तो कहते थे कैसरो किसरा के महल मिलेंगे, फना होगा, ये क्या, ये तो आज ये हमारा हालत हो गया कि हम यानी अपने रफाए हाजत के लिए जाने से भी डर रहे, हमारे साथ ये क्या वादे किए गए थे, सब झूठ था ये। और उस वक्त ईमान वाले जो थे उनका ईमान और मजबूत हो गया और उन्होंने कहा अल्लाह का वादा सच्चा है, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि तुम्हारे ऊपर आजमाइश आएगी, अल्लाह का वादा है ये, क्या नहीं है ये वादा? अगर नहीं आपको ये याद तो सूरह अनकबूत पढ़ के खोल के देखिए आप, 20वें पारे में अल्लाह ताला ने सूरह शुरू होती है तो फरमाया अल इस्लाम भी अहसिब الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون। लोगों ने क्या समझ लिया कि वो कहेंगे हम ईमान लेकर आए और उनको आजमाया नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तुम्हें आजमाया, तुम पे कोई इम्तिहान नहीं आना, तुमने ये समझ लिया? अल्लाह ने तो इम्तिहान लेना है, क्यों लेना है अल्लाह ने इम्तिहान? वलकद फतन्ना अल्लदीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले लोगों को भी तो इम्तिहानों में डाला गया। फलयअलमन्नल्लाहु अल्लदीना सदकू, ताकि जान ले अल्लाह तुम में से सच्चे कौन है और जान ले अल्काज़िबीन झूठे कौन है। जो सच्चा है वो उसको पता होगा कि अल्लाह का वादा इम्तिहान तो आने है, अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया है कि मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा, लो इम्तिहान आ गया। वो ये कहते हैं, वो छोटे छोटे इम्तिहानों पे ये नहीं सोचते कि कुरान पाक में ये भी आता है कि बाज लोग ऐसे हैं वो छोटी छोटी मुसीबतों पे भी चीख उठते हैं ऐसे जैसे कि अल्लाह का अजाब आ गया। नहीं, अल्लाह इम्तिहान लेगा और जब इम्तिहान आए उस वक्त कहे अल्लाह का तो वादा है, अल्लाह ताला ने तो हमें कहा हुआ इम्तिहान होना है हमारा, लो आ गया हमारा इम्तिहान। क्या पहले से तैयार नहीं थे? क्या ये कुरान पढ़ा नहीं हुआ? क्या नहीं जानते आप?
ایمان اللہ نہ پھولوں کی سیج ہے؟ کیا اسلام ایسے ہی ہے کہ بس آئے کلمہ پڑھا من مانی زندگی گزاری اور دنیا سے چلے گئے، جنت آپ کی ہے؟ ایسے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے ایسے سمجھ لیا ہے، اتنی آسان نہیں ہے جنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اللہ کا سودا جنت ہے. کیا ہے مہنگا کہ سستا؟ ہاں تو آپ نے سستا سمجھا ہے؟ ये लोग जो आजमाए गए ये क्या अल्लाह को प्यारे ना थे? हम बहुत लाडले हैं, अल्लाह सबको आजमाएगा, आजमाइशें आएंगी और तैयार रहना आजमाइशों के लिए. इनफरादी भी आएंगी, इज्तमाई भी आएंगी, जैसे मैंने आपको जंगे आजा आपका बताया, इज्तमाई एक उनके ऊपर इम्तिहान आया और इनफरादी तो आपको पता है कितने इम्तिहान आए, एक नहीं आया. फिर उसके बाद जब तबूक में गए, कितनी भूख थी, कितनी भूख थी कि यानी एक एक खजूर सबके हिस्से में आती थी. सहाबा फरमाते हैं कि उसके बाद ये हाल हो गया, हमें तब उस खजूर की भी वैल्यू पता चली जब खजूर भी नहीं, वो रह गई थी तो हम गुठलियों को चूसते थे, तो फिर पत्ते झाड़ झाड़ के कहीं से मिलते थे तो वो खा लेते थे. आपको शेबे अभी ताले भूल गए क्या आपके? अल्लाह अकबर. सहाबा पर इस कदर भूख थी, इस कदर भूख का आलम था, कोई चीज खाने को नहीं मिलती थी, कोई चमड़ा, कोई कहीं चीज कोई मिल जाती थी तो वो ही खा लेते थे. ये भूख का आलम था. और भूख किस कदर मुश्किल चीज है, अल्हम्दुलिल्लाह हम में से कभी किसी ने ये एक्सपीरियंस नहीं किया, मगर भूख बहुत बड़ा अजाब है, अल्लाह ना कभी दिखाए. तो दुनिया की जो मुश्किलात आती हैं, जो आजमाइश आए, उन पे घबरा ना जाए कि हाँ ये क्या हो गया. नहीं, तुम्हारे तो कुरान में लिखा है कि आएंगे तुम्हारे ऊपर इम्तिहान, तुम्हें तो पता होना चाहिए, तुम्हें तो रेडी होना चाहिए, तुम्हें तो इम्तिहान को देखते ही कहना चाहिए आ गया इम्तिहान, और तुम्हें तो सब ये दुआएं करनी चाहिए अल्लाह इस इम्तिहान से सुखरू करना, सही से गुजार देना हमें, हमारे ईमानों को ना धचका लगे, या अल्लाह हमारे ईमान इससे और मजबूत कर देना, ना कि तुम घबराने लगो, ना कि तुम चीखो पुकार करने लगो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारे साथ, हम पर तो वो इम्तिहान आए नहीं अभी. आम किसको इम्तिहान सोचती है, कोई टेढ़ी नजर से हमें देख ले तो आए है बड़ा, मेरे लिए तो बड़ा बहुत बड़ा इम्तिहान हो गया. कोई हमारी तरफ कोई कमेंट कर दे हमारे हिजाब के ऊपर, हमारे हाल हुलिये के ऊपर, आए तो हम तो वहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं. हमारे घर वाले, हमारे कोई हमें बातें सुनाने लगे तो हमें उसके ऊपर ही इतना स्ट्रेस हो जाता है. हमारे दोस्त अगर हमें अब बुलाते नहीं है क्योंकि हम कुरान की तरफ आ गए और हमने कुछ दो कदम आगे बढ़ा लिए इस रास्ते में, तो फिर उसके ऊपर भी हमें होता है कि हाँ हमारा बड़ा इम्तिहान है, ये बड़ा मुश्किल है. हम तो किसी चीज को भी बर्दाश्त नहीं करते, वो सोचते हैं ये जन्नत की हम उम्मीद रखते हैं, सोचते हैं हम जन्नत में चले जाएंगे ऐसे. हाँ कईयों पे बहुत बड़े इम्तिहान आए, फिर उनके दर्जे भी उतने बड़े हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़े इम्तिहान तो अंबिया पे आए हैं, उसके बाद उनके बाद वालों पे, उसके बाद उनके बाद वालों पे. तो अगर इम्तिहान आता है तो ईमान के मुताबिक आता है, अगर इम्तिहान आएगा तो जिस किस्म का ईमान होगा, जितना जिसका मजबूत ईमान होता है उसके मुताबिक आता है, और फिर दर्जे भी उसके मुताबिक एलिवेट होते. लेकिन आएगा जरूर इम्तिहान, ये ना समझना कि नहीं आएगा. आजमाइशें आएंगी, मुश्किलात आएंगी, वो देखो उनके ऊपर भी आई, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया कि जिस वक्त इस कदर मुश्किल आ गई कि जब अंबिया भी और उनके साथ मानने वाले भी बोल उठे कि मता नसरुल्लाह, तो अल्लाह ने फरमाया इन्ना नसरुल्लाह करीब, अल्लाह की मदद करीब है. तो जो चीज आ रही होती है वो करीबी होती है, अल्लाह छोड़ता नहीं है. जब रात बहुत गहरी हो जाए ना, अंधेरा बहुत ज्यादा हो जाए, तभी टाइम होता है कि अब दिन निकलने वाला है. हदीस में आता है बंदा जब नाउमीद होने लगता है ना, उसको लगता है कि अब नहीं कुछ हो सकता, अब नहीं कुछ होना, बस खत्म हो गया सब कुछ, तब अल्लाह ताला ताज्जुब करता है, اللہ حیران ہوتا ہے کہ میری فریاد رسی تو پہنچنے والی ہے، میری مدد تو پہنچنے والی ہے، اور میرا بندہ مایوس ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی جلدی کے اوپر اور اپنی رحمت کے قریب ہونے پہ ہنس دیتا ہے کہ دیکھو میری رحمت اتنی قریب ہے اور یہ کیسے مایوس ہوا چلا جا رہا ہے. اور اللہ کی مدد تب قریب ہوتی ہے جس وقت اللہ آزما لیتا ہے، اور دیکھ لیں پھر جنگ عذاب میں کیا ہو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد یہ کافر کبھی تم پر حملہ کرنے کے لیے دوبارہ نہیں آئیں گے، اور نہیں آئے کبھی، وہ بس آخری تھا. اللہ نے کیسے ان کا زور توڑ دیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھیں، آپ کے اوپر بھی کم مشکلات نہیں آئیں، ٹھیک ہے اس طرح کے ٹارچر نہیں آئے، لیکن ہر قسم کا پریشر آیا. آپ کے چچا کو اتنا پریشرائز کیا گیا کہ وہ آپ کو پریشرائز کرے، حتیٰ کہ ایک دن چچا نے بلا کے کہہ دیا، بھتیجے میرے بڑھاپے پہ رحم کر، مجھے نہ اتنا ستاؤ کہ تم یہ کام کو چھوڑ دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب چچا کی طرف سے یہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا تھا اس وقت کہ میرے چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک میں چاند بھی رکھ دیں تو میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا. وہ چچا نے جب دیکھا کہ میرا بھتیجا اس قدر ڈیٹرمنٹ ہے تو فرمایا جاؤ پھر جو بھی کر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر شدید انہوں نے دباؤ ڈالا کہ کسی طرح، یعنی یہ حد تک بھی آ گئے تھے کہ کہتے تھے کہ یعنی لالچ میں بھی نا، کہ آپ جس عورت کے اوپر ہاتھ رکھے ہیں وہاں پہ شادی کرانے کو تیار ہے، آپ سرداری چاہتے ہیں ہم سرداری دینے کو تیار ہیں، ہم پیسہ چاہتے ہیں ہم پیسہ دینے کو تیار ہیں، آپ بتائیں. یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہے. پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا گیا، کبھی جادوگر کہہ کے، کبھی کاہن کہہ کے، کبھی شاعر کہہ کے، لوگوں کو کیسے آپ سے بدزن کرنے کی کوشش کی گئی. پھر اوجڑی سر پہ رکھ دی تھی جس وقت کہ آپ سجدے میں گئے ہوئے تھے کعبہ، اور کیسے ہنس رہے تھے. مینٹل ٹارچر کتنی مشکل چیز ہوتی ہے. یہ جو مینٹل ٹارچر ہوتا ہے نا، ایک بعض دفعہ فزیکل ٹارچر سے بھی زیادہ ہوتا ہے. ہر صحابہ نے بھی کوئی کم قربانیاں نہیں دی. آپ کو حضرت بلال کا پتہ ہے، مصعب بن عمیر کا سوچے، مصعب بن عمیر سمجھ لیں مکہ کے شہزادے تھے، ان کی ماں اتنی مالدار تھی، اتنی یعنی اس کے پاس اتنا پیسہ تھا، ہمیشہ امپورٹڈ کپڑے پہناتی تھی اپنے بیٹے کو، اور فخر سے کہتی تھی مجلسوں میں کہ میرا بیٹا وہ ہے جس نے کبھی دھلا کپڑا نہیں پہنا. دھلا ہوا کپڑا نہیں پہنا مطلب یعنی ہمیشہ نیا کپڑا پہنتا. ظاہر ہے اتنے پیسہ تھا، بیٹا بھی لاڈلا تھا. تو کہا جاتا ہے کہ جب وہ سب گزرتے تھے نا کہیں سے، تو لوگوں کو انہوں نے جو خوشبو لگائی ہوتی تھی اس سے پتا چلتا تھا کہ مصعب یہاں سے گزرا، کیونکہ امپورٹڈ خوشبو ان کے لیے منگوائی جاتی تھی. یعنی شہزادوں والی زندگی. اور جب اسلام لائے تو اسی ماں نے کہا کہ اگر تو اس دین کا انکار نہیں کرے گا تو میرے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں. تو اس وقت کہتے ہیں کہ میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا، سب یہ عیش و آرام اور سب کچھ چھوڑ دوں گا. ماں نے کہا تھا کہ یہ جو سب کچھ تمہارے پاس ہے نا، یہ ہم نے دیا ہوا، یہ سب چھوڑنا پڑے گا، پھر اس کے لیے تیار ہو گئے. جب جانے لگے نا تو ماں نے کہا یہ جو تن پہ کپڑے پہنے ہوئے نا، یہ بھی ہم نے دیے ہیں، یہ اتار کے جاؤ. تو اس وقت ان کے اوپر جو اپنے اوپر ایک چادر سی لپیٹی، اس میں پیوند لگے ہوئے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو نبی علیہ السلام دیکھ کے رو پڑے کہ یہ وہ مصعب ہے. میری بہنوں آپ بتاؤ، مجھے یا آپ کو ایسی کون سی قربانی دینی پڑ گئی جس کے اوپر ہم روتے ہیں؟ ذرا ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکے، آئے میرے ہسبینڈ یہ نہیں کہتے ہیں، وہ یہ نہیں کرنے دیتے، وہ میرے سسرال ایسے کہتے ہیں، میرے بچے پسند نہیں کرتے، میرے فلانا یہ نہیں کرتا، کون سی ہم نے ظلم سہ لیے، مجھے صرف اس کا بات کا جواب دیا. کون سی ہمیں ایسی مصیبتیں اٹھانی پڑ گئی، کیا چیز ہمیں چھوڑنی پڑ گئی، لیکن پھر بھی ہمارے ہائے وائے ختم نہیں ہوتے. کیا قربانی دی ہے میں نے اور آپ نے اس دین کے لیے؟ صرف آپ کو نہیں کہہ رہی، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہی ہوں، کیا کیا ہم نے؟ پکا پکایا سب کچھ ہمارے آگے آگے، ہم ایک قدم بس آگے اٹھاتے تو اس میں بھی لڑکھڑا جاتے ہیں، कहते हाय उसने ऐसे कर, हाय वो तो मुझे छोड़ रहे, हाय वो तो मुझे ऐसे कह रहे। ये हमारा ईमान? जरा जानती अपने ईमानों पर, इस ईमान को लेके आप सोचते हैं कि हम जन्नत में जाने वाले? जबकि अल्लाह ताला की ये आयत क्या फरमा रही, क्या कह रही है ये आयत? या तो इस आयत को छोड़ दो या अपनी ये झूठी बातें छोड़ दो, या हम तो जन्नत में जाने वाले। अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया, इससे खुली क्या बात हो सकती है कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया तुम क्या समझते हो तुम जन्नत में जाओ? इट्स सो क्लियर। फिर उसके बाद इनका ये हाल था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मदीना भेज दिया था, वहां पे जितना इस्लाम फैला इनकी वजह से फैला। ये पहले गए हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी हिजरत नहीं की थी, पहला जुमा इन्होंने वहां पे कायम किया। और ओहद में देखा, सारा वक्त मुश्किलें ही सहते रहे। ओहद में जब ये शहीद हुए थे ना, तो इनका हाल ये था कि कफन के लिए चादर नहीं थी, एक चादर थी वो इतनी छोटी थी, अगर सर ढांपते थे पैर नंगे हो जाते थे, पैर ढांपते थे सर नंगा हो। तो आपने फरमाया सर की तरफ कर दो और पैरों पे घास डाल दो, उनको तो कफन भी वो नहीं मिले। तो मता नसरुल्लाह, कब आएगी अल्लाह की मदद? तो अल्लाह की मदद करीब है। जब इंसान ये सोचने लगता है ना कि मायूस होने लगता है कि अब नहीं कुछ हो सकता, हालात किसी किस्म के भी हो, इज्तवाई हो, इनफरादी हो, सबकी जिंदगी में कोई ना कोई मुश्किल है, कोई ना कोई परेशानियां, लेकिन देखो कि इनसे निकलना कैसे, ईमान के साथ या ईमान गवा के, और मजबूत हो के या जो रहा सहा था वो भी चला जाए। तो इसमें ना घबराओ कि आए मुसीबत आ गई, क्योंकि मुसीबत ने आना है, बादशाह भी आएगी, दर्रा किसी को आएगी, कोई जुलजिल होंगे जो कुछ हिला दिए जाएंगे। बाज दफा इलाज की तरफ से परेशानी आ जाती है, बाज दफा जिस्मानी ऐसी कोई परेशानी, कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, बाज दफा जहनी कोई ऐसा मसला हो जाता है कि इंसान कहता है क्या करूं। उस वक्त बाज लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों डिप्रेशन में जाते हैं? क्या उनको नहीं पता इन्ना नसरुल्लाह करीब, अल्लाह की मदद करीब है, क्यों डिप्रेस होते हो? अगर इस बात के ऊपर यकीन कर लिया जाए कि अल्लाह सुन लो लोगों, अल्लाह की मदद करीब है, तो कोई डिप्रेशन नहीं होगा, निकल आओगे डिप्रेशन से, क्योंकि तो करीब ही है, हमें नहीं नजर आती, अल्लाह ताज्जुब करता है, इसको नहीं पता कि मेरी मदद तो आने वाली है, लेकिन हमारे लिए एक एक दिन और एक एक रात पहाड़ बन जाती है, और हमें लगता है कि बस अब खत्म हो गया सब कुछ, अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये बड़ी एक रियलिटी चेक भी है ये आयत, और जो बासार दरार इसमें पड़े हुए उनके लिए बहुत बड़ी उम्मीद भी दिलाती है। तो जन्नत का रास्ता आपको पता है, जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जाके देख के आओ जन्नत का रास्ता, तो क्या उन्होंने आके बताया था? क्या बताया था बताया? फूलों की सेज था, मजे थे, फन था, और फन करते करते जन्नत में चले? नहीं, मुशक्कतें थी, मुसीबतें थी, तो फरमाया था या अल्लाह इस रास्ते पर तो कोई कोई चल सके, इस पे कौन चले? वाकई जन्नत का रास्ता मुश्किल है, और इसको समझ लो ना, आज ये बात समझ लो कि फिर मुश्किलात आए तो क्या करो। हाँ, जन्नत का रास्ता तो मुश्किल ही है, हमने इसके अंदर अपने सबर का मुजाहिरा करना और अपने ईमान को और बढ़ाना है। तो अल्लाह ताला ने कितना जबरदस्त हमें ये बता के समझा दिया कि अब सिर्फ महज ईमान का इकरार करने से तुम छूट नहीं जाओगे, ये ना समझना बस मुसलमान हो गए, मुसलमान घरों में पैदा हो गए तो बस इतना ही मेरे लिए काफी है, नहीं आजमाइश होगी, क्योंकि अगलों की भी हुई थी, सहाबा की भी हुई थी, उनसे ज्यादा प्यारे कौन, अंबिया की हुई उनसे ज्यादा प्यारे कौन है,